प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना
आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना।
कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों की पत्री नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस के अध्ययन के द्वारा हमें बताया गया कि हम ज्योति हैं, अर्थात वे जो मसीह में नया जन्म पा चुके हैं वे ज्योति के समान अपने जीवन में आगे बढ़ें। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं सीख सकें, समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। इस सभा के हर एक के भाई बहनों को आप आशीषित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे थे कि प्रचार करने से कोई परमेश्वर के निकट नहीं आएगा, पापों से मन नहीं फिराएगा, वे अंधकार में ही बने रहेंगे। परंतु जब हम ज्योति बन जाएंगे तब उनका अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। तो आइए आप मेरे साथ इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 15 से 17 पद को पढ़ें। लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यह विश्वासी की आचरण का एक और निर्देश है, उसे बुद्धिमानी से निर्वाह करना है। उसका आचरण समय के मूल्य को पहचानने और जीवित परमेश्वर के महत्व को प्रकट करना है। उसके आचरण का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले और उसी में स्थिर रहे। इस संसार में उसका आचरण प्रकट करता है कि वह मसीह का है। मेरे प्रियो, आप दुकानों में विक्रेताओं को देखेंगे कि वे कैसे तत्पर होते हैं, वह कैसा कर्मठ व्यक्ति होता है। यदि कोई परमेश्वर की संतान है तो वह नौकरी पर ना हो तो उसका व्यवहार कैसा होगा? क्या वह फुर्तीला है? क्या वह कर्मठ है? क्या वह परमेश्वर के लिए जी रहा है? विश्वासी को इस संसार में ऐसा आचरण करना है जैसे वह मसीह का है। मेरे मित्रों, एक विश्वासी को ऐसा आचरण करना है जैसे वह परमेश्वर की संतान है ताकि उससे पूछने की आवश्यकता भी ना पड़े। हम सबको अपने अपने आचरण के प्रति सावधान रहना है। मेरे प्रियो, आइए देखें कलीसिया का अनुभव। प्रत्येक सच्चे विश्वासी का अपना अनुभव होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत अनुभव में विश्वास करता हूँ। अब उसका यह व्यक्तिगत अनुभव क्या है, आइए देखें। इफिसियों की पत्री 5:18-19 में लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यह शराब की बुराइयों का प्रचार मात्र नहीं है, जबकि शराब प्राचीन युग का एक न छूटने वाला पाप था और आज भी है। यहाँ पौलुस तुलना कर रहा है, शराब के नशे में मत रहो। क्यों नहीं? क्योंकि वह क्षणिक है, क्योंकि वह आपको पाप और लंपटता में अर्थात बुराई में ले जाएगी और अंततः निराशा, हताशा और प्रलोभन में ले जाएगी। विश्वासी की आवश्यकताओं में यह नहीं आता है। यह सच है कि आज के मनुष्य को किसी बात की आवश्यकता है जिसके कारण वे शराब पीते हैं। यदि वे परमेश्वर की संतान नहीं है तो उनके पास अन्य कोई स्रोत या मार्ग नहीं है। परमेश्वर की संतान को तो पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए, यही विश्वासी का व्यक्तिगत अनुभव है। पवित्र आत्मा से भर जाने का अर्थ क्या है? पौलुस शराबी का उदाहरण देते हुए समझाता है कि जिस प्रकार आप एक शराबी को देखकर कह सकते हैं कि वह शराब से भरा हुआ है अर्थात नशे में है, इसी प्रकार विश्वासी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। विश्वासी की आवश्यकता है कि वह आत्मिक नशे से भरा हो। यह भावनाओं का उन्माद नहीं, परमेश्वर के लिए जीने और कुछ करने की कर्मठता है। इसका अर्थ है कि हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो जाएं। विश्वासी का आचरण और पवित्र आत्मा की भरपूरी परस्पर संबंधित हैं। पौलुस कहता है कि विश्वासी को सावधानी पूर्वक और चौकन्ना होकर तथा आत्मा से भरकर जीवन जीना है। ये विश्वासी के लिए दी गई आज्ञाएं हैं। आत्मा से भरना विश्वासी के जीवन के लिए शक्ति और कार्य ऊर्जा का लगातार नवीनीकरण है। यह वर्तमान की क्रिया है। आत्मा से भरा हुआ विश्वासी बुद्धिमान से चलता ही नहीं, वरन उसका मसीही चरित्र आत्मा के फल का प्रमाण है। आप देखिए गलातियों की पत्री 5:22-23 में। जी हाँ, विश्वासी को आत्मा के बपतिस्मे की आज्ञा कहीं नहीं दी गई है। 1 कुरिन्थियों की पत्री 12:13 में लिखा है कि हमें मसीह की देह में बपतिस्मा दिया गया है। क्या यह हमारा व्यक्तिगत प्रयास है? जी नहीं, यह प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा है। पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है और हम में अंतर्वास करता है। वह हम पर मुहर लगाता है। वह हमें बपतिस्मा देकर विश्वासियों की देह में जोड़ता है। विश्वासी को मसीह की सेवा के निमित्त पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक है। पेंतिकोस्त के दिन शिष्य एक स्थान में एकत्र हुए थे। उन्हें मसीह के लिए संसार में निकलना था, अतः वे आत्मा से भरे हुए थे। उनका अनुभव था कि उस दिन वे गवाही दें। मेरे विचार में आत्मा से भरना वैसा ही है जैसा पेट्रोल पंप जाकर अपनी कार में या अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालना। मैं दिन आरंभ करने पर परमेश्वर से कहता हूँ, हे प्रभु, आज मुझे पवित्र आत्मा में जीना है। आप मुझे जीने में मदद करें। मैं स्वयं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तेरे सामर्थ्य की आवश्यकता है, तेरे सहायता की आवश्यकता है। जी हाँ, हम विश्वासियों को आत्मा से भर जाने की प्रार्थना से दिन आरंभ करना चाहिए। यह विश्वासियों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आप कल या पिछले सप्ताह आत्मा से भर गए होंगे, परंतु यह आज के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं एक दिन पेट्रोल पंप में गया और अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरने के लिए कहा। उसने आश्चर्य से कहा, आपने कल ही तो टंकी भरवाई थी, कहाँ घूम आए? मैंने उससे कहा कि मैं बहुत दूर सूर्योदय सभा लेने गया था, फिर रविवार आराधना की। अतः मेरे मित्रों, आप आत्मा से भर जाने के बाद परमेश्वर के लिए काम करते हैं और आत्मा में चलते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके पास आने वाले दिन के लिए भी पर्याप्त आत्मा हो। कल आपको फिर से आत्मा की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि कुछ लोग परमेश्वर के लिए सामर्थ्य रूप से काम में लिए जाते हैं, परंतु दूसरे दिन उन्हें आत्मा की आवश्यकता होती है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, आपके बारे में तो मैं नहीं जानता, निश्चय ही आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। हमें प्रतिदिन आत्मा की भरपूरी नए सिरे से चाहिए, इससे हमें आत्मा में जीने की क्षमता प्राप्त होगी। हम कभी कभी लड़खड़ाएंगे और गिर भी जाएंगे। मेरा बेटा चलना सीख रहा है और अब चलने भी लगा है थोड़ा बहुत, परंतु वह कई बार गिर जाता है। उसके माथे में नाक पर चोट लग जाती है, परंतु वह उठकर फिर चलता है और एक दिन वह दृढ़ता से चलेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं आत्मा में जीना सीखें। वह चाहता है कि हम आत्मा से भर जाएं। अब प्रश्न यह है, आत्मा से भरने का प्रमाण क्या है? आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। परमेश्वर के आत्मा ने यह एक अच्छी बात कही है कि आपस में गाया करो। मेरे विचार में भजन से उसका अभिप्राय है भजन संग्रह के भजन जो संगीतवद्ध थे। स्तुति गान वे थे जो विश्वासियों ने परमेश्वर की स्तुति में रचे थे और भजनों से कम औपचारिक थे। आत्मिक गीत वे थे जो आराधक के मन से उभरते हैं। ये आत्मा से भर जाने का प्रमाण थे, क्योंकि वह मनुष्य के मन में आनंद भर देता है। मेरे मित्रों, मैं शराब और आत्मा के भरने की तुलना में एक और उदाहरण देता हूं। आजकल मधुशाला और रेस्तरां में हैप्पी आवर या आनंद का समय लिखा होता है। वहां कुछ लोग आपस में बैठकर आनंद मनाते हैं। मैंने देखा है कि मनुष्य जब वहां प्रवेश कर रहा होता है तब वह आनंदित दिखाई नहीं देता है, परंतु जब वह बाहर निकलता है तब भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई नहीं देती है। विश्वासियों को भी आनंद की आवश्यकता होती है, परंतु बोतल नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा, जिससे कि वे प्रभु के आनंद को प्रसारित कर पाए। प्रेरित यूहन्ना अध्याय 15 उसके पद 11 में लिखता है कि हमारा आनंद पूर्ण हो। यह आनंद पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु के द्वारा पूरा होता है। देखिए पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 3-4 पद में, हमें कलीसिया की आराधना में आनंद और विनोद करना है। प्रभु का आनंद अश्लीलता नहीं है। ऐसा आनंद आत्मा के भर जाने पर आता है जो प्रभु की ओर से होता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। जी हाँ, आत्मा से भर जाने का एक और प्रमाण है सब बातों में परमेश्वर पिता का धन्यवाद। भजन संग्रह में हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद की बहुतायत को देखते हैं जो बहुत ऊंचे स्तर पर है। आज विश्वासियों के मध्य यह अधिक प्रचलित नहीं है। हम सबको कहना चाहिए यह की स्तुति करो और परमेश्वर के अवर्णित वरदानों के लिए उसका धन्यवाद करो। क्या आप दिल से ऐसा कह सकते हैं? दिल की गहराई से ना निकले तो वह व्यर्थ है। आत्मा से भर जाने पर आभारी जीवन उत्पन्न होता है, जिससे कि हम सब बातों में परमेश्वर को निष्ठापूर्वक धन्यवाद दे सकते हैं। आजकल मैं अनेक स्थानों पर सुनता हूँ, सबसे कहें मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मेरे मित्रों, यदि आप किसी से प्रेम नहीं करते तो मत कहें, और यदि वास्तव में प्रेम करते हैं तो प्रेम का प्रदर्शन करें, मुख से नहीं बल्कि व्यवहार से। एक महान डॉक्टर, एक महान विश्वासी एक बार ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे कि उन्हें प्यास लगी। एक घर में गए और पीने के लिए उन्होंने पानी मांगा। एक छोटी लड़की निकल कर आई और कहा कि वहां पानी नहीं है, परंतु उसके पास ठंडा दूध है। उन्होंने दूध ही मांग लिया। पीकर वह बोले, ओह यह बहुत स्वादिष्ट है। उस बालिका ने पूछा, आप और पियेंगे क्या? उन्होंने कहा, अवश्य। उसने एक गिलास दूध और दिया। दूध पीकर वे आगे बढ़ गए। वह सोच रहे थे कि वह बालिका कैसे मृदु स्वभाव की थी। कुछ दिन पश्चात वह बालिका बीमार हो गई और अस्पताल लाई गई। उसे ऑपरेशन की आवश्यकता थी। कैसा संयोग था, उसका डॉक्टर भी वही था जिन्हें उसने दूध पिलाया था। वह उसे तुरंत पहचान गए और विशेष सावधानी से उसकी देखभाल की और उसका ऑपरेशन किया, उसकी सेवा की। जब चंगी हो गई और उसके घर जाने का समय आया, तब उसके माता पिता के हाथ में एक लिफाफा दिया गया। उन्होंने कांपते हाथों से उसे खोला तो बिल पर लिखा था 2 गिलास दूध से पूरा चुकाया गया। उस पर उसी डॉक्टर के हस्ताक्षर थे। यह कार्यकारी प्रेम था, सजीव प्रेम, आत्मा के फल से उत्पन्न प्रेम, क्योंकि वह डॉक्टर एक अति उत्तम विश्वासी था। मेरे मित्रों, आपको सबसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप उनसे प्रेम करते हैं। आप करके दिखाइए, आत्मा से भर जाइए, तो आपके जीवन में प्रेम, आनंद और धन्यवाद उमड़ने लगेंगे। यही व्यवहारिकता है। आप परमेश्वर से क्यों नहीं कहते कि वह आपको आत्मा से भर दे? हमें अपनी तो कोई योग्यता नहीं है। हमें परमेश्वर से कहना है कि हम खाली हैं और हमें आत्मा से भर जाने की आवश्यकता है कि हम उसके लिए जी पाएं। हमें देखना यह है कि हमारे लिए जो आवश्यक है और जो संभव नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारे द्वारा सब बातों को कर सकता है। मैं इसे दोहराऊंगा क्योंकि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें आदेश है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। पवित्र आत्मा के संबंध में विश्वासियों को केवल यही एक आज्ञा दी गई है। पवित्र आत्मा की अन्य सब सेवाएं मसीह को ग्रहण करने पर हम में पूरी हो जाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। जी हाँ, विश्वासी में पवित्र आत्मा का अंतर्वास है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। विश्वासी पर पवित्र आत्मा की छाप दी गई है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 13 पद में, जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। विश्वासी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 13 पद में। हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। विश्वासी द्वारा मसीह को ग्रहण करते ही पवित्र आत्मा उसे ये 4 सेवाएं प्रदान करता है। हमारे लिए एकमात्र काम यह रह जाता है 5 अध्याय के 18 पद में कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। शब्द अधीन रहो, पौलुस यह नहीं कह रहा है कि कलीसिया में किसी वृद्ध या वरिष्ठ व्यक्ति से आदेश प्राप्त करो। हमें अपने उद्धार के नायक से आदेश प्राप्त करने हैं। जी हाँ, यहोशू अपने आप को इसराइल का अगुआ समझता था। एक दिन उसने देखा कि शिविर के बाहर एक व्यक्ति तलवार लिए खड़ा है। उसने पूछा, यहोशू 5 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। यह सुनते ही यहोशू जान गया कि वास्तविक अगुआ देह धारण से पूर्ण वह प्रभु यीशु है। उसने तुरंत जूते उतारे क्योंकि वह पवित्र स्थान था और उसे दंडवत किया। मेरे प्रियो, हमारा एक कप्तान है, परंतु हमारा संबंध सैन्य व्यवस्था के आधार पर नहीं, प्रेम के आधार पर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि यदि हम उससे प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाएं मानेंगे। मेरे विचार में इसका तार्किक विकल्प है, यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं रखते तो मेरी आज्ञा मत मानना। यहां हम देखते हैं कि हमें मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहना है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम मनुष्य को सलामी दें और उसे दंडवत करें। इसका अर्थ है मन की दीनता जो मसीह के भय से आती है। मेरे प्रियो, अध्याय 4 उसके 1 और 2 पद में पौलुस कहता है कि हमारा चाल चलन दीनता एवं नम्रता प्रकट करे। वही बात यहाँ पर है। पौलुस अध्याय 4 में कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूँ। यह आदेश नहीं, प्रेम का आग्रह है। सीनै पर्वत की आग समाप्त हो गई है। अब कलवरी के क्रूस पर मसीह के काम के कारण परमेश्वर का अनुग्रह बरस रहा है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। इसका अर्थ है कि कलीसिया का संचालन आपके हाथ में नहीं है। पास्टर, कलीसिया के पदाधिकारी, सदस्य आदि सबको मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहना है। यह मेरी इच्छा है वाली बात नहीं है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। यह आत्मा से परिपूरित विश्वासी का स्वभाव नहीं है। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहना आत्मा से भर जाने का एक और प्रमाण है। मेरे प्रियो, आज हम इस बात को अच्छी रीति से समझ जाएं कि मसीह की आत्मा हमारे जीवन में आना और भरपूरी को पाना कितना महत्वपूर्ण है। यदि आज तक आपने परमेश्वर की आत्मा की मांग नहीं की है, आत्मा से आप नहीं भरे हैं, तो प्रभु से आज आप मांगना आरंभ कर दें, अपने जीवन में उसे आने दें। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज से आप अवश्य ही उस आत्मा की भरपूरी में बढ़ते जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, प्रभु तेरे चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा।